لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. سورة البقرة آیت نمبر 264. اس کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا. ایسا اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ انفاق کرتے ہیں لیکن احسان جتاتے ہیں, یہ دکھ دیتے ہیں اور ان کے اندر ریا کی بیماری پائی جاتی ہے, اور جو یہ نیکی کرتے ہیں دنیا ہی میں بدلہ چاہتے ہیں. لا یقدرونا, اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں کہ یہ نہیں قادر ہوں گے الا شئین, کچھ بھی نیکی کمانے پر, مما کسبو, جو انہوں نے انفاق کیا ہے, جو انہوں نے عمل کیا ہے. اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے, اللہ کا یہ دستور نہیں ہے کہ وہ کفر کرنے والوں کو سیدھا راستہ دکھائے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انفاق کے اندر جب صحیح روح نہیں پائی جاتی, جب اس میں ریاکاری ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ احسان اور اذیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے, تو اللہ رب العزت ایسا رویہ اختیار کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں, یہ کفر کرنے والے ہیں. تو یہ کفر کیسا ہے؟ جو عمل سے سامنے آتا ہے. اب دوسری مثال جو ہے بڑی خوبصورت مثال ہے, اور یہ مثال ہے مقبول صدقات کی. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور ان کا دینے کا طریقہ جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ, اور مثال ان لوگوں کی جو انفاق کرتے ہیں, کیا چیز؟ اموالہم, اپنے مال, جو مال اللہ نے ان کو امانت کے طور پر دے رکھے ہیں, جن کے مال میں اللہ نے غریبوں کا, مسکینوں کا, یتیموں کا, رشتہ داروں کا اور دوسروں کا حصہ رکھا ہے, تو وہ اپنے مال جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. نمبر ایک, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. یہاں پہ ابتغاء کا لفظ جو ہے وہ اہم ہے, اور ابتغاء جو ہے اس کے معنی ہے چاہنا, ابتغاء. اور آپ دیکھ لیں کہ با, غین, یا, اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے چاہنے کے لیے. تو وہ چاہتے ہیں مرضاتی, رادواد و بھی اور رادواد یا بھی, رضا مندی, خوشی. کس کی؟ دنیا کی نہیں, اللہ, اللہ کی. تو پہلی چیز جو بہت نمایاں ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. نمبر دو, وَتَثْبِیتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ, اور دل کے پورے قرار کے ساتھ. یہاں پہ تثبیتن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, اس کا روٹ ہے سا با تا, سا با تا, ایک حالت پر جمے رہنا. تثبیتن کہتے ہیں علم و ایمان کی مضبوطی کو, اور نمبر دو, اعمال کی مضبوطی اور پائیداری کو. نمبر تین, خلوص نیت. تو ان کے اندر عقیدے کے لحاظ سے بھی مضبوطی پائی جاتی ہے, عمل کے اعتبار سے بھی مضبوطی پائی جاتی ہے, اور نمبر تین, ان کی نیت جو ہے اس میں اخلاص ہوتا ہے. وہ ریاکاری نہیں کرتے, دکھاوا نہیں کرتے. وَتَثْبِیتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ, پورے دل کے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ, ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جنتن, ایک باغ ہو, بربتن, کسی بلندی پر. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے جنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, اور جیم نون نون اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں پوشیدہ, چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. جنت ایسی زمین کو کہتے ہیں جو درختوں کی وجہ سے چھپ گئی ہو, یا ایسا باغ جس کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی ہو اور اس کی وجہ سے وہ اندر سے نظر نہ آئے. جن کا لفظ بھی اسی سے ہے, کیونکہ جن نظر نہیں آتا. جنین, وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا, اس کو بھی جو ہے یہ کہا جاتا ہے. جنون کا روٹ بھی یہی ہے, کیونکہ جنون کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نظر تو نہیں آتی. تو کیا کہ اس کے ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ باغ, بے ربوۃ. ربوۃ جو ہے اس کا روٹ ہے बा वो, इसके मानी है बुलंद जगह या टीला। और जो सूत का लफ्ज है ना, उसका रूट भी यही है, क्योंकि टीला जैसे एक जमीन है और उसके ऊपर और जमीन हो तो वो ऊंची हो जाती है ना, तो बुलंद जगह को कहते हैं। तो सूत क्या होता है कि किसी को जो पैसे दिए जाते हैं, जैसे किसी को $100 दिए और कहा कि जब इतने अरसे बाद वापस करोगे तो 25 और दोगे, तो 25 का इजाफा है ना, गोया के ऊपर टीला है, एक बुलंदी कायम कर ली। तो रब्बा का लफ्ज जो है ये बुलंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखें कि पहली बात तो क्या है कि जैसे कि एक बाग, नंबर दो बुलंदी पर है, नंबर तीन असा बहा वाबिलुन और पहुंची उसको बारिश। और वाबिल का लफ्ज जो है आप पढ़ चुकी हैं कि वो बा लाम जो है बड़ी और भारी बूंदों वाली बारिश को कहते हैं, ऐसी बारिश जो बड़ी शदीद किस्म की हो, जिसमें पानी की कसरत भी हो, उसके अंदर शिद्दत भी हो और तेजी भी हो, बारिश का आखिरी दर्जा। अब तीसरी बात यह हुई कि उस पर जो है वो जोर की बारिश आ गई, फाआतत उकुलहा दैफैन। तो जब जोर की बारिश होगी तो क्या होगा, फाआतत उकुलहा दैफैन, तो वो दुगना फल लाए। फरमाया तो फल जो है इससे उसका दुगना होगा। फइल्लम युसिबहा, और अगर जोर की बारिश ना भी आए, अगर जो जोर की बारिश है वो ना भी हो, फइल्लम युसिबहा वाबिलुन, अगर ना हो इस बाग पर वाबिलुन जोर की बारिश, फतलुन, तो तलुन जो है यही काफी है। तल का लफ्ज जो है ये शबनम या फवार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तोए लाम लाम, और इसके मानी है जैसे हल्की बारिश, बिल्कुल खफीफ, जैसे कि फुहार। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अगर जोर की बारिश ना भी हो तो एक हल्की फवार ही इसके लिए काफी हो जाए। वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर, और जो कुछ तुम करते हो सब अल्लाह की नजर में है। अब यहां पर जो है ये बताया जा रहा है कि ऐसा शख्स जो कि अल्लाह की रजा की खातिर अपने माल को जो है वो खर्च करता है, तो उसके खर्च की मिसाल ऐसी है कि क्योंकि उसके अंदर नेक नियति है, इखलास है, तो थोड़ा खर्च भी जो है आखिरत के लिए काफी हो जाएगा। और उसके खर्च की मिसाल तो ऐसे ही है जैसे कि जो है वो जोर की बारिश है और जिसके नतीजे में जो है वो जमीन दुगना फल लाती है। और वैसे एक बात आप याद रखें कि वो बाग जो बुलंदी पर होता है, वो बाग जो है फल के लिहाज से बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो आमतौर पर सैलाब से, तूफान से और इस तरह की चीजों से महफूज रहता है। और वैसे भी अहले अरब का ये जौक था कि किनारे किनारे वो बाग के खजूरों के दरख्त लगाते, बीच में अंगूर की बेलें, और बाग के अंदर फसल की काश के लिए जो है वो कतात रखते थे। और जब बाग बुलंदी पर है, नीचे नहर बह रही है जिसकी नालियां बाग के अंदर दौड़ा दी गई हों, तो आप सोचें कि वो बाग जो है वो एक खूबसूरत और बेहतरीन बाग है, एक अच्छा बाग, और एक अच्छे बाग की तस्वीर जो है यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो खींची है। इससे क्या बात पता चलती है कि असल चीज जो है कि सदका खैरात जब किया जाए तो रब की रजा जो है उसको सामने रखा जाए। कहते हैं कि ये जो आयत है ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के लिए जो है वो नाजिल हुई, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जो कि सिद्दीक कहलाए, कैसे अमल करते थे, उनकी एक मिसाल भी मैं आपके सामने रखती हूँ कि एक दफा जो है वो उनके वालिद ने उनको देखा कि गरीब गुलामों और लौंडियों की आजादी पर रुपया खर्च कर रहे हैं, तो उनके वालिद ने कहा बेटा मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम कमजोर लोगों को आजाद कर रहे हो, अगर मजबूत जवानों की आजादी पर तुम यही रुपया खर्च करते तो तुम्हारे लिए जो है वो कुव्वत बनते। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया अब्बा जान मैं तो वो अजर चाहता हूं जो अल्लाह के यहाँ है। तो असल बात क्या है, आप देखें सूरत अल-लैल में भी है, وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى। कि जो मुत्तकी होते हैं, नेक लोग होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रब की रजा की खातिर जो है वो खर्च करते हैं। तो ऐसा शख्स जो खर्च करता है तो उसका जो है वो अजर उसको कई गुना जो है वो बढ़ा चढ़ा कर जो है वो मिलेगा। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, और अल्लाह खूब जानता है कि तुम क्या करते हो, कि तुमने दिखावे के लिए किया या फिर रब की रजा के लिए किया। अल्लाह के इल्म में जो है वो सब कुछ है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, और ये मिसाल जो है ऐसे शख्स की है जो रियाकारी करता है, जो दिखावा करता है, और अमल तो करता है, इन्फाक करता है, लेकिन ये कि दुनिया के लिए, दिखाने के लिए। तो बताया कि अल्लाह के पास उसका जो है वो जिंदगी भर का इन्फाक जो है वो जाया हो जाएगा। जिंदगी में उसने जो कुछ कमाई की, अल्लाह के यहाँ उसका कुछ भी अजर नहीं मिलेगा। और चूंकि वो अल्लाह के पास होगा तो वहां पे दोबारा वो इन्फाक तो कर ही नहीं सकता। तो उसकी जिंदगी भर की जो मेहनत थी, कमाई थी, कारनामा हयात था, वो सब वहां पे जाया हो जाएगा। ये बड़ी जबरदस्त मिसाल है, और इस मिसाल के जरिए से ये बात सिखाई गई है कि जब खर्च किया जाए तो अल्लाह के लिए किया जाए। आप देखिए ये मिसाल, आया वद्दु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई पसंद करता है। वो दाल दाल वद के मानी होते हैं पसंद करना, वदूद चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला। तो क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है, अन तकूना लहू जन्नतुन, जन्नतुन के उसका जो है एक बाग हो, मिन नखीलिन खजूरों का, व अनाबिन और अंगूरों का। अब आप देखें कि अरब के बागों में से एक अच्छे बाग का जो है वो तसव्वुर दिलाया जा रहा है कि एक बाग है और बाग के इर्द गिर्द खजूरें लगी हुई है। नखील का लफ्ज जो है ये वाहिद और जमा दोनों के लिए आता है, और खजूर के दरख्त के बारे में याद रखें कि 30 साल में जवान होता है, 200 साल तक फल देता है। और वैसे भी जो है वो सहराई इलाकों में खजूर के दरख्त कसरत से पाए जाते हैं, हालांकि वहां पे पानी की सहूलत नहीं होती और जमीन की वो जरखेजी नहीं होती, लेकिन खजूर का दरख्त जो है वो बागो बहार की तरह जो है अपनी बहार के रंग दिखाता है। वह अनाबिन और फिर अंगूर, और आयन नून बाइस का रूट है, और ये लफ्ज जो है फल के लिए भी इस्तेमाल होता है और अंगूर की बेल के लिए भी। तजरी जीम रा या, इसके मानी होते हैं जारी होना, चलना, और चलती हो मिनताहती हल अनहारू, इसके नीचे नहरें, कि वो बाग जो के जिसके इर्द गिर्द खजूरे हैं और अंगूरों की बेलें लगी हुई हैं और नहरों से उसको पानी दिया जा रहा है, लहू फीहा मिन कुल्लि समरात, और उसके अंदर हर किस्म के फल हैं और हर किस्म के फलों से वो लदा हुआ है। तो ऐसे शख्स के पास क्या है कि उसका बाग जो है वो फलों से लदा हुआ है। समर की जमा है समारात। अब हुआ क्या कि वह असाबहुल किबारू, अब जो है उसको बुढ़ापा आ पहुंचा। आप पढ़ चुकी है ना कि ये असाब का लफ्ज जो है पीछे आपने मुसीबत के लिए भी पढ़ा था, सैयब के लिए भी आपने ये लफ्ज जो है पढ़ा था। तो इसके असल मानी क्या होते हैं कि तीर का निशाने पे लगना, तीर का निशाने पे लगना, और इसी तरह ये लफ्ज मुसीबत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वह असाबहुल किबारू, और उसको पहुंचा बुढ़ापा, किबर यहाँ पे बुढ़ापे के लिए, वलहु जुर्रियतुन, और उसके लिए है बच्चे उसके, दुआफा कमजोर, कमसिन छोटे, ज़ईफ जो है उसकी जमा दुआफा है, और इसके मानी है कि छोटे बच्चे, कि खुद वो बूढ़ा हो गया है और बच्चे हैं उसके छोटे। फसाबहा, और फिर पहुंचा इसको, आ पकड़ा इसको, किसको, उस बाग को। यहाँ की जमीर बाग के लिए आई है। ए सारुन फी ही, बगोला इसमें, ए सारुन बगोला। अब आप देखें कि ऐन स्वाद रा जो है वो इसका रूट है, और इसके मानी होते हैं गर्द, गर्द के गर्दो गुबार है, बगोला यानी ऐसी गर्दो गुबार या हवा जिसके अंदर आग भी हो। और वैसे ऐन स्वाद रा के लफ्जी मानी होते हैं निचोड़ना। मोसिरात बादलों के लिए भी आता है। गर्दो गुबार वाली तुंदो तेज हवा जो फिजा में चक्कर काटे, गर्दो गुबार से पुर ऐसी तेज हवा जो सीधा आसमान का रुख करे। और एसार का लफ्ज जो है ना, नागवार हवा के लिए आता है, क्योंकि तेज भी है, तुंदी भी है, और उसके अंदर जो है वो आग भी है। फसाबहा एसारुन, और फिर एक तेज बगोला उसको लगा, फी ही नारुन, और उसमें आग भी थी। यानी आप देखें कि लू थी, आग थी, फह तरकत, बस उसने उसको जला दिया। फह तरकत हारा काफ, इसके मानी होते हैं जलना, तो उसने उसको जला दिया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून, इस तरह अल्लाह अपनी बातें तुम्हारे सामने बयान करता है, शायद कि तुम गौर और फिक्र से काम लो। अब आप देखिए कि इस मिसाल के जरिए से जो है ये बात सामने रखी गई है कि आप जरा गौर करें कि ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी भर की कमाई के बाग बाग में जो फूलों से फलों से लदा हुआ है, और जो है वो पानी भी है, खजूरें भी हैं, अंगूर भी हैं, बहुत कुछ है उसके अंदर, लेकिन हुआ क्या कि जब वो बूढ़ा हो गया और जब उसके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, तो हुआ क्या कि बाग जो है अचानक तुंदो तेज हवाओं के चलने से सारा बाग जल गया। अब बुढ़ापे की वजह से खुद तो बाग दोबारा आबाद नहीं कर सकता, बच्चे हैं उसके छोटे जो बाग के लगाने में उसकी मदद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जो मिसाल दी गई है, एक रियाकार इन्फाक करने वाले की मिसाल दी गई है कि कयामत के उसका हाल ये होगा कि निफाक और रियाकारी की वजह से इसके सारे अमाल जाया हो जाएंगे, वहां नेकियों की शदीद जरूरत होगी। अब दोबारा अमाल करने की, नेक अमाल करने की ना उसको मोहलत मिलेगी ना उसको फुर्सत मिलेगी, और बड़ी ही हसरतनाक होगी उसकी जो है वो उस वक्त हालत। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा यही हाल हो? आइए अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लें, अपने सदकात, अपनी खैरात, अपनी जकात, आप अपना जायजा लें कि आपने अब तक जो सबका खैरात किया, क्या उसमें इखलास था? क्या उसके बाद किसी पे एहसान तो नहीं जताया? क्या अपनी जबान से किसी को दुख तो नहीं दिया? दिखावा तो नहीं किया? क्योंकि आपको पता ही है कि एक शहीद, एक कारी और एक आलिम जो है, और इसी तरह एक सदका खैरात करने वाला कयामत के दिन लाया जाएगा, और फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसके माथे के बालों से घसीट कर, पकड़ कर इसको जहन्नुम में जो है वो डाल दो। फरिश्ते कहेंगे कि ये तो आलिम था, ये तो कुरान पढ़ने वाला था, ये तो हाफिज था, ये तो सदका खैरात करने वाला था, ये तो शहीद था। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि नहीं, इन्होंने जो कुछ भी किया इसलिए कि इनके इन अमलों के अंदर दिखावा था, कि दुनिया इनको जो है वो कारी कहे, दुनिया इनको सखी कहे, दुनिया इनको शहीद कहे, तो अपनी नेकी का बदला ये दुनिया में पा चुके। तो आप सोचें कि क्या जो भी आप सदका खैरात करती हैं, क्या आप चाहती हैं कि आपके आपका ये हाल हो? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह नो और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हों ने इस मिसाल के बारे में जो है फरमाया कि ये वो लोग हैं जो सारी उम्र नेकियां करते हैं और आखिरी उम्र में शैतान के जाल में फंस कर अल्लाह के नाफरमान हो जाते हैं, जिससे उम्र भर की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। इसे सही बुखारी ने रवायत किया है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून, इस तरह अल्लाह अपनी बातें तुम्हारे सामने बयान करता है, शायद कि तुम जो है वो गौर व फिक्र से काम लो। तो फिर जो है वो अमल के लिए क्या उसूल हमारे सामने आते हैं, एक ही बात है जो हम सब के लिए नुमाया तौर पर सामने आती है कि जो है वो अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, आखरत पर ईमान, और जो अमल भी किया जाए वो रब की रजा के लिए किया जाए। जान, माल, अपनी कुव्वतें, सलाहियतें, अपने औकात जो हैं, जो भी जो है वो लगाए जाए, सदका दिया जाए, तो जो है वो अल्लाह के लिए दिया जाए, इखलास से नियत पैदा करके जो है वो अमल किया जाए। और दूसरी बात आप याद रखें कि नेकियां करना आसान है, लेकिन उनको बचाना, उनको उनकी हिफाजत करना मुश्किल है। तो इस सिलसिले में जो है ना संजीदा होने की जरूरत है। और कयामत के दिन जब अर्श के साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा, तो उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में जो है वो खर्च करते हैं, तो जो अल्लाह की रजा की खातिर खर्च करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों को अर्श के साए के नीचे जो है वो जगह देगा। तो कितने खुशकिस्मत हैं कि जब कयामत के दिन अर्शे इलाही का साया जो है उन लोगों को नसीब होगा। और ये वो कौन होंगे जिसने इतने खुफिया तरीके से सबका किया कि बाएं हाथ को भी पता ना चला कि इसके दाएं हाथ ने जो है वो क्या किया है। तो सदका करना, खैरात करना, ताकि वो कई गुना जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो फल लाए, तो ये बात है जिसकी हम सबको फिक्र करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबकी नेकियों को कबूल करे, हम सबसे राजी हो जाए, हम सबके गुनाह माफ करे, और इस छोटी सी दुनिया की जिंदगी में आखिरत की तैयारी करने वाला बनाए। याद रखें कि जब भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बारी आती है तो शैतान डराता है कि फकीर हो जाओगे, तुम्हें खुद जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे, तुम खुद क्या करोगे, और फिर पता नहीं आगे फिर जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, और फिर इन लोगों ने हमारे साथ क्या सलूक किया कि हम इनके साथ नेकी करें। तो तरह तरह की बातें जहन में आती हैं और फिर नेकी की तरफ बढ़ता हुआ हाथ जो है वो रुक जाता है। तो असल बात जिसकी फिक्र रखने की जरूरत है कि दुनिया की खुशियां भी नापायदार और दुनिया के गम भी नापायदार। आइए हमेशा हमेशा की आखिरत की खुशियां जो हैं उसके सौदागर बन जाएं, उसके ताजिर बने, उसकी फिक्र करने वाले बने, और फिर उसके लिए हमें अपनी सलाहियतें, कुव्वतों की कुर्बानी के साथ साथ जो है वो अपने माल की कुर्बानी करनी होगी। अपनी ख्वाहिशात जो हैं उनको एक तरफ रख कर उनकी कुर्बानी देते हुए अल्लाह की दीवी इमानत, अल्लाह का दिया हुआ माल जो है वो अल्लाह के रास्ते में हम खर्च करें, और अल्लाह को ये अदाएं, ये अमल जो है वो बहुत पसंद है। और दूसरी बात, जो सदका खैरात कर ले तो उसके बाद जो है उसको महफूज करने की कोशिश करें, उसको बचाने की कोशिश करें और उसकी हिफाजत की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह।